વીણારા ઘણા હેતાલુ શ્રોતાઓ ઓર દર્શકાને કેશી માલુરા ઘણે માન સહિત રામ રામ સર. વીણા એક લંબે સમયથી રાજસ્થાની લોક સંગીત રે ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરી રહી હે ઓર ઈ ક્ષેત્રમાં બા આપરે દર્શકાઓ ઓર શ્રોતાઓ કો વિશેષ સ્નેહ પ્રાપ્ત કર્યો હે. એક લંબે ટાઈમ સુ માલુગા કને આ માંગ લગાતાર આ રહી હતી કે વીણા કવિતા ઓર સાહિત્ય કે ક્ષેત્રમાં ભી પ્રવેશ કરે. રાજસ્થાની લોક જીતા લોક સંગીતરા પ્રેમી હે બતાઈ પ્રેમી બે કવિતાઓરા ભી હે. વીણા ઈ નયે ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે ઓર કવિ સંમેલનરે રૂપમાં કવિ ગોષ્ઠિયારે રૂપરે માયને આપને રાજસ્થાન કા લબ્ધ પ્રતિષ્ઠ ઓર નયા નયા સબ તરહ કા કવિયા શું નિરંતર પરિચય કરાંતા રહેશી. આ કવિયામાં આ કવિતાઓમાં હાસ પરિહાસ ભી હુસી, રોમાન્સ ભી હુસી, પ્યાર ભી હુસી, તકરાર ભી હુસી, ઇશરાર ભી હુસી ઓર મેં આશા કરું કે બહુ સબ કુછ હુસી જેકો મારા સુધી શ્રોતા ઓર દર્શક નિરંતર ચાહતા રહે. ધન્યવાદ.
નમસ્કાર. સબસે પહેલે તો મેં વીણા કલા અકાદમી કે સૂત્રધાર આદરણીય કેસી માલુજી કા આભાર પ્રકટ કરના ચાહુંગા કે આપ સબ લોગો સે મુજે મિલવાને કા એક ઉપક્રમ કિયા, શ્રોતાઓ ઓર કવિયો કે બીચ મેં એક પુલ કા કામ કિયા. જીવન મેં હાસ્ય બહુ દુર્લભ હૈ, લેકિન અગર આપા તલાશા તો આસપાસ હી જબરદસ્ત હાસ્ય હૈ. મેં કવિ સંમેલન મેં ગયો તો માને એક શેખાવાટી કા શેઠ મિલ્યા, બોલા સંપત સરલજી પ્રોગ્રામ કે બાદ ખાણો આપની કોઠી પર લેણો હૈ, લેવા કે લીએ ગાડી ભિજવા દૂંગા, થે તો યા બતા દો રસોઈ કચ્ચી લેવા યા પક્કી. મેં કહી શેઠજી રસોઈ તો ચાહે કચ્ચી બનવા લીજો, લેકિન બાદ પક્કી રાખજો. રાજસ્થાનમાં તો 12 મહિના મધુમાસ રહે, ઇતનો ઉલ્લાસ ઇતનો આનંદ હૈ ભાઈ. એક બહુ આપકો છોરો સાસ કને છોડ કરકે પિયર ચલી ગઈ. 10 દિન બાદ મેં બહુને ફોન કર્યો, સાસુ બોલ્યો બહુ જલ્દી આજા, છોરો બહુત ઉદાસ રહે. તો બહુ પૂછ્યો સાસુજી છોરો કુણ સો ઉદાસ રહે, થાર લોગ માર લો. ઇતનો જબરદસ્ત હાસ્ય. વો એક જમાઈ સસુરાલ ગયો તો સાડી બોલી, બોલ્યો જીજાજી ખાણું જીમ લ્યો. તો વો પૂછ્યો જી ખાણું જીમણે કે લે જૂતા ખોલના પડેગા કે? તો સાડી બોલી જી ખોલોગા નહીં તો ખાઓગા કે? રાજસ્થાનીમાં તો જબરદસ્ત હાસ્ય ભરેડો પડ્યો હોય. બસ વો એક જમાઈ ચલ્યો ગયો સસુરાલ, બડી આવ ભગત તો વિદાઈ કે ટેમ રવાના હોવા લાગ્યો. તો સાસુજી તિલક કરવા લાગી, તિલક કરકે નગદ રૂપિયા દેના કહી, જીને આપણા જુવારી બોલા કહી, જમાઈ તો એ ચક્કરમાં ચક્કર કાઢતા રહે. વો મારવાડી આદમી શુભ અશુભ બહુ દેખે, પૂછ લ્યો બોલ્યો સાસુજી તિલક કી ટાઈમ મું કુણ સી તરફ કરનો હે? તો સાસુ બોલી જમાઈજી સાસરા અહીંયા 15 દિન હોગા, મું તારા ઘરા કી તરફ કરો. અમ આપણે કે કઈ વાર જ્યાં મળમાસ લાગ જાય તો શુભ કામ નહીં હો, કઈ વાર તારો લાગ જાય તો માંગલિક કામ નહીં હો. તારો લાગવાના આપણે દેશ કી ભાષામાં બોલે તારો ડૂબણો. હવે એક નહીં નહીં બહુ બિચારી પિયર જાણે કે લે બેઠી ઓર તારો ડૂબવાળો, બા દેખો તારો ડૂબ જાગો તો મેં જા નહીં શકુંગી. અચ્છા બા તારો ડૂબવા કે લે આપકી સાસને પૂછ ભી નહીં શકે, ક્યુંકિ તારો ભી કા જેઠજી કો નામ. તો એક દિન પરેશાન હોકર અપણી સાસુને પૂછ્યો, બોલ્યો સાસુજીઓ જેઠજી કો નામ કબ ડૂબેગો? તો આપણે ઇતનો હાસ્ય હે. એક નિવેદન મેં કરું, જહાં જહાં મેરી બાત આપકો અચ્છી લગે ભરપૂર તાલિયા બજા કરકે મેરી બાત કા સમર્થન કરતે રહે, મુજે સૂચિત કરતે રહે, ક્યુંકિ હમ કવિયો કો એક વરદાન હૈ જો હમારી કવિતા પે તાળી નહીં બજાતા ઉસે અગલે જન્મ મેં ઘર ઘર જાકે બજાની પડતી હૈ. જીવનમાં ઇતનો કમ્પિટિશન હૈ બી કા કારણ શું બડો તનાવ હૈ. વો એક અપરાધી આપકા વકીલને 1 લાખ રૂપિયા ફીસ દિયા બી કે બાવજૂદ ફાંસી હોગી. તો દૂસરો વકીલ બોલ્યો યાર લોગ ભી કયા પીસા ઠગાવા કે લાગ રહ્યા હૈ, આઈ ફાંસી મેં 1000માં લગવા દેતો. ઇતનો જબરદસ્ત કમ્પિટિશન હૈ જીવનમાં. વો એક આદમી કા પિતાજી ગુજર ગયા તો વો આપકા દોસ્ત ને બોલ્યો યાર મેં તો દેખ 12 દિન બિઝી રહૂંગો. પિતાજીને હરિદ્વાર ગાલ્યા. વો દોસ્ત ભી હોશિયાર આદમી હો, પૂરો કિરાયો તો જેબમાં ગાલ્યો, પિતાજીને હરિદ્વાર કે બીચમાં ઇકઠે પટક્યો. वापस आयो 10-15 दिन बाद में भी दोस्त ने बड़ो डाउट सो हो तो वो आपका भी मित्र ने बोलो यार रात ने सपना में मेरा पिताजी आया भैया कह रहा कि यार अच्छो आदमी भेजो किराए तो जेब मंगा लियो और मन तो वो ठेठ हरिद्वार को नहीं पहुँचाए रास्ता में पटक गो। तो वो बोले यार बात तो तेरी ठीक है लेकिन तेरा पिताजी में मर करके भी अक्कल नहीं आई सपना में जितना अठीने चाला उतना बढ़ीने चालता तो हरिद्वार पहुंच जाता। अच्छा देश और दुनिया में मैं तो कई भी कई कई जगह जावा कवि सम्मेलन में मारवाड़ी आदमी ट्रेड में बिजनेस में इंडस्ट्री में सोशल वर्क में इतना आगे क्यों है भी कोई एक कारण है कि मारवाड़ी आदमी इमोशनल तो हो ही लेकिन प्रैक्टिकल भी हो व्यवहार कुशल बहुत हो। वो एक मारवाड़ी को बेटो आपका पिताजी ने बोले बोले बापू जी नज़र कमजोर है दूर को कोनी सूझे 2,000 रुपये दो चश्मो बनवाऊंगो तो पिताजी भी को कान पकड़ करके मकान की दूसरी मंजिल पर लेगा और पूछो बेटा वो क्या है बोले बापूजी चांद बोले साला और कितनी दूर को देखे वो। मारवाड़ी आदमी की खास बात यह है कि वो चाहे कितने भी साल पहले राजस्थान छोड़कर गया दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है लेकिन अपनी भाषा कला साहित्य संस्कृति वो जो जुड़ाव है जमीन का उससे वो कभी कटा नहीं। आप उनके परिवारों में देखें वही भाषा वही संस्कृति आप लोगों को मिलेगी और किसी ने कहा भी है कि चिड़िया कितने उड़े आकाश दाना है धरती के पास। मैं ज़्यादा देर न करते हुए एक रचना आप लोगों को सुनाऊं बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। वो कह है जी कि कोई काम टेम्परी होना चाहिए बींद जब फेरा में बैठ गो तब छोरी की माँ बिगड़गी। बोले जी मैं तो मेरी बेटी ने कोनी ब्याहूं बींद बूढ़ो है तकदीर को नहीं फोड़ना। गराती बराती सब समझाई बोलो ना जी मैं तो कोनी ब्याहूं छोरी का तकदीर को नहीं फोड़ना बीन बूढ़ो है एकदम हार खा करके भी को आदमी भी ने समझायो बोले देख तने जो भी फैसलो करना है फटाफट कर नहीं और बूढ़ो यहाँ जा रहे। आदरणीय शरद जोशी और केपी सक्सेना जी हिंदी कवि सम्मेलनों में गद्य पाठ करते थे जो कविता से ज़्यादा प्रभावी होता। मैंने भी एक सिलसिला शुरू किया है गद्य पढ़ने का। एक गद्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसके बाद और आगे सिलसिला चलेगा। लोग कहते हैं पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया या अमेरिका के पास में कौन कौन से हथियार रहने जाने लेकिन भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे सारी दुनिया डरती है चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे आतंकवादी हो। वो हथियार सिर्फ दुनिया में भारत के पास ही है। हम गांधी के देश के लोग हैं वो जो हथियार है मैं पहली पंक्ति से आप लोगों का ध्यान चाहूँगा उस हथियार का नाम है बातचीत। हाँ जो सिर्फ भारत के पास ही दूसरे किसी के पास नहीं है। वहीं से मैंने व्यंग निकालने की कोशिश की है जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे आप मेरी बात का समर्थन कर मुझे सूचित करते रहें। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब भारत से क्या बातचीत करें उससे जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं है। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की आप दोनों का आपसी मसला है ये सो आप दोनों आपस में ही बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा ध्यान चाहूंगा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। और अब व्यंग आप देखें बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। बिना विषय की बातचीत का सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आएं। भारत ने कहा बातचीत में जल्दीबाजी ठीक नहीं है, पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की, बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेते हैं, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, स्थान बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। व्यंग देखें, दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत नहीं की। बातचीत टूट नहीं जाए अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर ये कहता रहा कि ये दोनों देशों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। अब अंतिम पंक्तियां और व्यंग आप तक पहुंचे, भरपूर ताली बजाकर समर्थन करें। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे, भारत ने बातचीत में कहा हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे, चाहो तो दोबारा बातचीत कर लो। बातचीत में भी हास्य निकल सकता है। मैं एक कविता आप लोगों को सुनाऊं। मैं एक स्कूल में अध्यापक था और मैंने वहीं से व्यंग निकालने की कोशिश की। आज देश में समस्या अज्ञान की नहीं, अर्ध ज्ञान की है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते, वहीं से मैंने व्यंग निकालने की कोशिश की है। एक बच्चा मेरी क्लास में था, मैंने कहा बेवकूफ़ कुछ सीखा कर, 4 साल हो गए हर बार फेल हो रहा है, हम तेरी उम्र में थे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजिशन आते थे। बोले जी आपको कोई डंका मास्टर पढ़ाता होगा। बच्चों का क्या कुछ भी कह दे। वो एक बच्चा ने तो मैं 15 दिन तक ऋषि को रिलिख वो सिखायो, 15 दिन बाद चौक दे करके मैं कहो बेटा बोर्ड पर लिख ऋषि, वो रिलिख वो कोनी सीखो। बोलो मास्टर जी बाबा जी लिख दूंगे। बच्चों के साथ यही समस्या है, पहले तो उनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। एक बच्चा मेरे पास ट्यूशन करने आता था, 2 दिन तक आया नहीं, 3रे दिन मैंने उसकी खिंचाई कर दी। मैंने कहा बेवकूफ कहाँ रहा 2 दिन। बोले मास्टर जी परसों तो मैं इसलिए नहीं आया, मेरे पास एक ही पेंट थी, वो धोकर सुखा दी, सूखी नहीं तो कैसे आता। मैंने कहा नालायक कल तो आ सकता था। बोलो कल आया था, आपके घर तक आकर देखा बरामदे में आपकी सूख रही है तो वापस चला गया। बच्चे कुछ भी कह देते। एक बच्चे से मैंने कहा बेटे तेरा जन्म कहाँ हुआ था। बोले मास्टर जी तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा बेटे स्पेलिंग क्या है। बोले जी फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। बस यहीं से मैंने कविता निकालने की कोशिश की। जैसा देश में वातावरण है, ये जो आजकल घर घर में चैनल के माध्यम से बातें पहुंच रही हैं, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कैसी दशा है, वही सब बातें आपको मैं इस कविता में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अब ये चैनल वालों का तो कोई भरोसा नहीं है। टीवी पर तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाए जाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता है। अखबारों से किस तरह से साहित्य धीरे धीरे गायब हो रहा है। एक आया एक मेरे पास आदमी, बोले भाई साहब होकर था वो, बोले बाबू जी नया अखबार लॉन्च हो रहा है 1 रुपये में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपये तो चाहे 2 ले जाए लेकिन 16 पेज खाली ले जाया कर। ये जो सारी स्थितियां हैं, पहली 2 पंक्ति एक अध्यापक की पीड़ा, उसके बाद में हाशविंग जहां जहां आपको अच्छा लगे भरपूर समर्थन करते रहे, कि 84 लाख जानवरा की आत्मा बनकर रेत की जिया छन्या, हार खार मिनखा जून मिली तो मास्टर आ बन्या। 84 लाख जानवरा की आत्मा बनकर रेत की जिया छन्या, हार खार मिनखा जून मिली तो मास्टर आ बन्या। सुबह सुबह घरवाली ने आवाज दी, सुने है के कठे बड़ी है, देख आज का न्यूज़पेपर में हिंदी टीचर की वैकेंसी निकली है, लिखो है ट्रेंड अनट्रेंड व्यक्ति आवेदन भिजवाओ और प्रमाण पत्रा के अलावा एक ताज़ा फोटो भी चिपकाओ। मैं कही और तो सब ठीक है लेकिन फोटो वाली बात को लाग रहे हो डर, समझ में नहीं आ रही स्कूल आला ने मास्टर चाहिए विवाह योग्यवर। आज ज्ञान की नहीं फेस वैल्यू, समझ में नहीं आ रही स्कूल वाला ने मास्टर चाहिए अभी भाई के वर, तो वर को नाम सुनता ही घराली तन की कोरा हवा में तीर मत फेंको, मुंह धोकर आईना में शकल देखो, नौकरी को मामलो है औकात में रिझो, और फोटो छोटो भूलसू भिजवा भी मत दीजो, फार्म रिजेक्ट हो जाए वो। साथ में सदा के लिए नोट भी लाग सके खरो कि सकल मास्टर के लाइक नहीं पाएगी, कोई चिड़ियाघर में अप्लाई करो। और व्यंग देखो, मैं कही बावली बया तो तेरी बात में बहुत दम है, लेकिन आजकल की स्कूल भी कौन सी चिड़ियाघर सुकम। मैं ले राम को नाम र फार्म भिजवायो, निश्चित तारीख ने इंटरव्यू के लिए आयो, मेन गेट में घुसता ही एक जना ने पूछो, चौकीदार जी प्रिंसिपल साहब से मिलनो है, वो हाथ जोड़कर कही आदेश करो के काम है, प्रिंसिपल ही सेवक को इनाम है। मैं पूछो कि स्कूल में चौकीदार नहीं है, वो बोले न होबा की कुन कह रहे है, दरअसल चौकीदार ऑफिस में नया लोगों का इंटरव्यू ले रहे है। लेट मत करो, जल्दी सी भागो, और थे भी इंटरव्यू की लाइन में जा लागो। खैर मैंने इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुआ, एक क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू किया। मैं बच्चों से कुछ प्रश्न करता हूँ, बच्चे उनके उत्तर देते हैं, विसंगति और विडंबनाओं पर व्यंग है। पहली चार पंक्ति, आज़ादी के बाद की 58 साल के राजनीतिक परिदृश्य पर व्यंग, ये देश कैसे चला, किसने चलाया, आपको अच्छा लगे भरपूर समर्थन करें। कि सबसे पहले मैं एक जनरल नॉलेज को प्रश्न करियो कि भारतीय संविधान के अनुसार मतदान की उम्र 18 लेकिन शादी की 21 साल क्यों है? मॉनिटर बोलो मास्टर जी यूं है, थे खुद भुगत भोगी हो, था नहीं बात को ध्यान है कि आजकल देश चलानो गृहस्थी चलाने से ज्यादा आसान है। एक जना ने पूछो उपन्यास सम्राट कौन है रे चंदा, वो बैठे बैठे बोले गुरुजी गुलशन नंदा। लोग प्रेमचंद का नाम भूल गए। आजादी के 58 साल में हमने इतना खो दिया कि अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी इसलिए याद रहती है क्योंकि 2 अक्टूबर को दारू के ठेके बंद रहते हैं। एक लड़की ने सीता के वनवास जाने को औचित्य पूछो, माताएं बहने या बैठी है मातृशक्ति, अपने संस्कार कितनी गिर गए, उस लड़की का कुतर्क देखना, बात अच्छी लगे समर्थन करना। एक लड़की ने सीता के वनवास जाने को औचित्य पूछो कि राम लक्ष्मण तो ठीक लेकिन सीता जी वनवास क्यों गई, तो लड़की कही सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगली ठीक है। लड़की कही सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगली ठीक है। बीच में एक स्टूडेंट दी ग्रेट पैकेट निकाल कर बोले सर सिगरेट। मैं कही कभी पी नहीं भाई, वो तुरंत जर्दी तुलसी की चौपाई, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परेशान होकर मैं सब विद्यार्थियों ने धमकाया कि बेवकूफी है, क्या को शोर है, पूरी क्लास पोलियम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। मैं कही अब जरा मूल विषय पर आऊं, हिंदी का अध्यापक हूं, आपको हिंदी की कोई बात बताता हूं। हिंदी में एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द होते हैं जो लगते एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग हो। जैसे दो शब्द है अस्त्र और शस्त्र, फेंक कर मारो तो अस्त्र, पकड़े पकड़े मारो तो शस्त्र। बच्चा बोला सर एक सवाल है, जूतो अस्त्र या शस्त्र थारो के ख्याल है? अच्छा जूता तो 2-in-1 है और मामला लोकसभा विधानसभा का हो तो 1-in-1 है। परेशान होकर मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की, कैसे कैसे नालायकों को एडमिशन दे दिया। वो कही तसलीरा को हिम्मत मत हारो, आज का जमाना में बच्चा की बजाय खुद ने सुधारो, तनख्वाह पाओ घर जाओ, शिक्षा का नाम पर सिर्फ साक्षरता कार्यक्रम चलाओ, यदि सब स्कूलों में ही पढ़ जाएगा तो बेचारा प्रौढ़ शिक्षा वाला के खाएगा। मैं सब बातों पर ध्यान धरियो, दूसरा ही दिन सुधार शुरू करियो, मैं क्लास में पहली जाऊं, विद्यार्थी बाद में आवे और खुद का सम्मान में मने खड़े पावे। मैं सबने हाथ जोड़कर कहूं प्रणाम प्रियवर, छोरा छोरी आशीष दे, लॉन्ग लिव माय सर। तो यो साल मास्टरी को 5वां वर्ष है और अब तक की नौकरी को ही निष्कर्ष है कि देश की राजनीति शिक्षा ने यहाँ को मोड़ दियो, यहाँ को मोड़ दियो, कि एकलव्य भाकर द्रोणाचार्य को अंगूठो तोड़ दियो, एकलव्य भाकर द्रोणाचार्य को अंगूठो तोड़ दियो। बात मीडिया की कर रहे थे, अब इनको तो क्या कुछ ना कुछ बेचने के लिए चाहिए मीडिया वालों को, सामाजिक सरोकार कितने घट गए। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री निवास में हमारे जयपुर की 2 लड़कियां घुस गई, तो उसको 24 घंटे ऐसे दिखाते रहे जैसे लड़कियों के घर में प्रधानमंत्री घुस गए। वो उत्तर प्रदेश में एक आईजी हुए पांडा, वो राधा आपने भी देखी होगी, कितनी सुंदर राधा थी। मैं सही कह रहा हूं, अगर राधा उस आईजी पांडा जितनी सुंदर थी तो मेरी सारी सहानुभूति कृष्ण के साथ है भाई। मैं खुद कृष्ण होता और अगर राधा उस आईजी पांडा जितनी सुंदर होती तो सही मानो अपना ही सुदर्शन चक्र अपने गले पर रख लेता। उसके बाद तो जब भी किसी पुलिस वाले को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खाकी वर्दी में गोपी घूम रही हो। मीडिया को क्या, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये। एक मैं कविता आप लोगों को और सुनाता हूं। देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो किस ढंग से बदल रहा है और हमने 58 साल की आजादी के समय में क्या खोया और क्या पाया, बस उसी बात को लेकर के मैंने एक कविता लिखी। गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड, तोपों की सलामी, झांकियां विकास की, ये सारी चीजें आप सब लोग देखते रहते हो। वो झांकियां इस देश का आईना नहीं है, सब सरकारी खर्चे से प्रायोजित कार्यक्रम। ऐसा नहीं कि सब कुछ झूठ हो, लेकिन उसमें आंशिक सच्चाई है। देश की जो गरीबी है, जो पीड़ा है, जो त्रास है, वो वहां बताया नहीं जाता। उन झांकियों में क्या बताया जाना चाहिए वो दृश्य मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पहले मैं भी प्रेम कविताएं लिखता था, लेकिन बाद में हास्य व्यंग लिखने लगा। शुरुआती दौर में ऐसी स्थिति थी प्रेम कविताएं लिखते टाइम कि उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो 5-7 गजल लिख मारता था, फिर भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही हो। हाँ, मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। एक समय होता है आदमी का, नया कवि उस दौर से गुजरता है। उम्र होती है एक जब आदमी को धनों भी बसंती लगती है, बाद में 7 फेरे खा लो तो उसी बसंती की धनों करके रह जाता है आदमी। मेरा एक मित्र है जिसने प्रेम विवाह किया, शादी के साल पर बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हाल है तेरे प्रेम रोग का, बोले भाई साहब क्या बताएं, प्रेम तो खत्म हो लिया, रोग बचा है अब तो, सारी बुखार उतर जाती है। शादी के टाइम जो कंकर झील में फेंकता है वो बाद में दाल में निकलते हैं। वो जिस लड़की को लेकर के भागा था अब उसको देखते ही भागता है। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी रहा, कुछ किया नहीं ज्यादा, लोगों के लिए प्रेम पत्र लिखता था, इतनी मदद मेरी तरफ से जरूर होती थी। मेरे लिखे हुए प्रेम पत्रों से 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो वो ठुकता था या उसकी शादी हो जाती थी, हालांकि बात एक ही है। कई मिलते हैं मुझे जो मेरे प्रेम पत्रों के कारण से ब्याहे गए, मुझे देखते ऐसे दांत पीसने लगते हैं, बोले साले ने एक अच्छे खासे अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। प्रेम जैसा कुछ नहीं, समय और परिस्थितियां सब बदल गई। अब तो ट्यूबलाइट ने स्थान ले लिया है समा का, परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। इसलिए मैं वो आज़ादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग पैदा हुआ, वहीं से मैंने कविता निकालने की कोशिश की है। आज भ्रष्टाचार इस देश में कितना व्याप्त है वो मुझे ध्यान है। एक सरकारी कर्मचारी ने फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके अधिकारी ने उसको डांटा, बोले मौके का फायदा उठा क्या, 3 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे, और तालियां आपकी अब चाहूंगा। बोले 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। वो बोला साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। ये जो स्थितियां हैं यहीं से मैंने कविता निकालने की कोशिश की। मेरी पत्नी बोली जी आप हर बार मुझे टीवी पे दिखा देते हैं वो सारे दृश्य, कभी साक्षात दिल्ली ले जाकर के 26 जनवरी दिखाओ। पति पत्नी की बातचीत है, यहीं से कविता निकलेगी। पहली पंक्ति से हास्य आप लोग पकड़ लेंगे, आपको आनंद आएगा। सुबह सुबह घरवाली ने पूछो आज क्यों कैलेंडर में सिर खपारी है, वाह बोली जी देख रही हूं कि आपका 26 जनवरी कितनी तारीख ना आ रही है। भाषा का कितना दुरुपयोग करते हैं। मैदान में खड़े आदमी को गुस्से में होते हैं तो डांट देते हैं गेट आउट। सुबह सुबह घरवाली ने पूछो, करते हैं ऐसा लोग, जैसे किसी से पूछो साहब वो फला आदमी के घर जाना है, बोले साहब सीधे स्ट्रेट जाकर के गोल सर्किल से लेफ्ट में बाएं हो जाना। सुबह सुबह घरवाली ने पूछो आज क्यों कैलेंडर में सिर खपा रही है, वह बोली जी देख रही हूँ कि आपका 26 जनवरी कितनी तारीख ना आ रही है। मैं कही 26 जनवरी और कितनी तारीख, तेरो दिमाग तो ठीक है। वह बोली लड़ती लड़ती कि दिमाग ही ठीक हो तो कभी का पल्ला थोड़ी पड़ती। कवियों से सब दुखी रहते हैं, ये तो वीणा वालों ने अच्छा काम किया जो आपको कवि सुनवा रहे हैं, और हम भी आभारी हैं इनके, वरना कवियों को कोई सुनता नहीं है। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, फ्लाइट में पास वाली सीट पे एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया, बोले भाई साहब क्या करते हो, मैंने कहा जी कवि हूँ, और मैंने पलट के पूछा आप, बोले जी बह रहा हूँ मैं तो। सुबह सुबह घरवाली ने पूछो आज क्यों कैलेंडर में सिर खपा रही है, वह बोली जी देख रही हूँ कि आपका 26 जनवरी कितनी तारीख ना आ रही है। मैं कही 26 जनवरी और कितनी तारीख, तेरो दिमाग तो ठीक है। वह बोली लड़ती लड़ती कि दिमाग ही ठीक हो तो कभी का पल्ला थोड़ी पड़ती। ये तो टाइम ही बताओ को दिमाग मेरो खराब है या थारो, दिल्ली की 26 जनवरी दिखा दो, कभी तो जन्मपत्री के ठोकर मारो। मैं धर्मपत्नी ने लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुयो, ट्रेन में चढ़िया तो भीड़ ठसाठस, डिब्बा में गैलरी तक मैं सामान का 8-10 बोरा, और वहाँ पर बैठा छोटा मोटा एक दर्जन छोरी छोरा, टीटी पूछो कौन को है वो एक ट्रक वजन, और ये बच्चा एक दर्जन, एक राजस्थानी भाषा की लोकोक्ति जिसने आज़ादी के बाद के 58 साल का पूरा चरित्र खोल करके रख दिया। बात अच्छी और सच्ची लगे ताली बजाकर सूचित करें कि ट्रेन में चढ़ा तो भीड़ ठसाठस, डिब्बा में गैलरी तक मैं सामान का 8-10 बोरा, और वहाँ पर बैठा छोटा मोटा एक दर्जन छोरी छोरा, टीटी पूछो कौन को है वो एक ट्रक वजन, और ये बच्चा एक दर्जन, भीड़ मासु बोला कोई सुख और सारी का, कि सामान त्यागी जी को और बच्चा ब्रह्मचारी का। कि ठेका क्या मिला हुजूर को सड़क की कुटवाई का, बंगले में संगमरमर का बरंडा हो गया। कि सामान त्यागी जी को और बच्चा ब्रह्मचारी का, मैं भी बच्चा की मासु मजाक करी कि बहन जी आधा तो घर ही छोड़ जाता। वह बोली भाया समझदारी में तेरा सु सवाई हूं, सफर की सुविधा के लिए आधा ही लाई हूं। रात में मेरी 500 की जेब कटी, सुनकर घरवाली घबरागी, मैं कही भगवान सामान समेट लक्षण बता रहा है दिल्ली आ गई। तो दिल्ली की सड़कों पर भीड़ जिया आग लाग रही हो और लोग घर खाली करके जा रहे हो, या कोई तुगलक का आदेश सु राजधानी बदलकर दिल्ली सु दौलताबाद जा रहे हो। धक्का खाकर राजपथ पर पहुंचा तो सबसे पहली राष्ट्रपति ने 21 तोपों की सलामी दी गई। जिस आतंकवाद की चर्चा करते हैं उस समस्या का समाधान क्या है, एक पंक्ति में मैं कहना चाहता हूं, बात अच्छी और सच्ची लगे तो मेरा समर्थन करें। धक्का खाकर राजपथ पर पहुंचा तो सबसे पहली राष्ट्रपति ने 21 तोपों की सलामी दी गई। धर्मपत्नी बोली एक तरफ कश्मीर में अघोषित युद्ध जारी है, देश को दुर्भाग्य देखो कि तोपा दिल्ली में सलामी का काम आ रही है। फिर शुरू हो राष्ट्र की प्रगति और विकास को दिखाओ, वो झांकियों के चित्र हैं चार, आपके सामने रखता हूं। पहली झांकी की तरफ गयो ध्यान कि राजस्थान में अकाल की समस्या और समाधान। अकाल पीड़ित लोग गांव छोड़ने के लिए जरूरी सामान कंधा पर धर रहा है और मुख्यमंत्री जी वाना झंडी दिखाकर रवाना कर रहा है। दूसरी तरफ विधायक जी दबाकर हैंडपंप को उद्घाटन करो तो लोग बोला नया हैंडपंप में पानी नहीं है, के बात है, मैं कई पानी कटासु वगो गडोड़ो ये एक हाथ है। दूसरी झांकी में निर्माण मंत्री पुल का लोकार्पण कर रहे हैं, नयो पुल जनता ने समर्पित कर रहा है, और पास में इंजीनियर हंसतो यो खड़े हो, लोग बोला बिना नदी कई पुल, लोग बोला बिना नदी कई पुल, मंत्री जी कही सबर राखो जनहित में यहाँ का कई पुल तना दूंगो, कुर्सी सलामत रही तो एक दिन नदी भी बना दूंगो। घरवाली बोली है जी नया पुल में सीमेंट तो नजर नहीं आ रही, मैं भी ने फटकारियो, भगवान जाने सरकार के विकास की झांकी देख वो कब सीखेगी, जब सामने इंजीनियर खड़े हो तो सीमेंट कहीं दिखेगी। अब की बारो देश की आर्थिक प्रगति को दृश्य बिजनेस से, ट्रेड से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं अब की बारो देश की आर्थिक प्रगति को दृश्य कि रिपियो डॉलर के चरणा में ऊंदा मुंह पड़े है और पास में फाइनेंस मिनिस्टर खुद की जेब में हाथ दिया हंसतो यो खड़े है। रिपियो डॉलर के चरणा में ऊंदा मुंह पड़े है और पास में फाइनेंस मिनिस्टर खुद की जेब में हाथ दिया हंसतो यो खड़े है। लोग चिल्लाया या झांकी झूठ कहे है भारतीय वित्त मंत्री को हाथ हमेशा दूसरा की जेब में रहे। एक तरफ आम आदमी सरकार की फिजूल खर्ची सु हाँफ रहे है बंद करो रिजर्व बैंक नोट तो बिचारो पाकिस्तान छाप रहे है। कितना भला पड़ोसी है हमारे वीर रस के कवि काफी उल्टा सीधा कहते रहते हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसा भला पड़ोसी भाग्यशाली देश वालों को मिलता है। पाकिस्तान जाते रहते हैं हमारे नेता। हमने पाकिस्तान से 20 आतंकवादी भी मांगे लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दिए क्योंकि वो इस देश का शुभ चिंतक है। वो जानता था जिस दिन भारत सरकार को सौंपेंगे सारे के सारे मंत्रिमंडल में होंगे। अपराध और राजनीति इस देश में दो अलग मुद्दे रहे ही नहीं। जब संसद पर आक्रमण हुआ तो उन आतंकवादियों को गोली मारने से पहले उन बहादुर सिपाहियों ने ललकारा होगा। अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर अगर मेरी बात अच्छी लगे भरपूर समर्थन करना। उन आतंकवादियों को गोली मारने से पहले उन बहादुर सिपाहियों ने ललकारते हुए जरूर कहा होगा कि भैया मानते हैं आप बहुत बड़े अपराधी हैं, चाहे कितने भी बड़े आतंकवादी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। अब की बार वो हिंदी फिल्म विकास को लेखो अंतिम झांकी का दृश्य आप देखें। अब की बार वो हिंदी फिल्म विकास को लेखो देवता आकाशवाणी करी कि देखो देखो हीरोइन का कपड़ा को सीन इतनो विकट ज्या 40 किलो की पार्सल पर 4 रुपया को टिकट। घराली बोली हैं जी इतना कम कपड़ा इन्हें शर्म को नहीं आवे, मैं कहीं शर्म भी नहीं आती तो इतना भी को नहीं पहनती। हीरो आपका बाप ने पूछो डैडी शादी से पहली लड़की देखनी चाहे के, डैडी शादी से पहली लड़की देखनी चाहे के, बाप बोलो बेवकूफ शादी के पहली लड़की देखनो, भारतीय संस्कृति में बहुत गलत कायदो है, जब कुआं में कूदनो ही है तो गहराई नापने से के फायदो है। मैं वापस जयपुर आकर सिर ठोक्यो, लोग बोला क्यों दिल्ली जाकर बाहर झोंक्यो। आजादी के बाद देश की प्रगति और विकास को यो हाल है कि मार्च पास्ट का नाम पर कोरी कदमताल है। मार्च पास्ट का नाम पर कोरी कदमताल है। मार्च पास्ट का नाम पर कोरी कदमताल है। राजस्थानी में आपने घर परिवार में भी इतनी हास्य का क्षण निकल जाए अगर बाना आप संग्रह करवो शुरू करा लोगों ने सुनाओ तो भी काफी हास्य निकल जाए। मैं पिछले दिन एक प्रयोग करियो कि पति पत्नी के बीच में भी जो बात हो बाने में लिखवो शुरू कर दियो तो एक अच्छी खासी कविता सी होगी। मैं को शीर्षक ही रख दियो कहा सुनी, हाँ बीमा सुई कविता निकल जाए। पत्नी बोल रही है मैं जवाब दे रही हूँ या मैं पूछ रही हूँ वह जवाब दे रही है या कहा सुनी मासुई हास्य निकल जाए। भैया भी इतनो हास्य बिखरेड़ो पड़े हो राजस्थानी में तो वो एक डॉक्टर कहने मरीज चले गए घुटना में दर्द हो तो डॉक्टर भी ने पर्ची लिख दी और बोले दोनों टाइम रगड़ जे तो वो पर्ची देख करके बोलो डॉक्टर साहब लिखेड़ी बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़नी है। इतनो उम्र भरे पड़े हाँ। वो एक मारवाड़ी ने आपकी लड़की को रिश्तो करनो तो लड़का का बाप ने बोले शाहजी मैं तो गरीब आदमी हूं मेरे कन तो कन्या और एक रुपयो है। तो लड़का को बाप रुपये लियो सर के लगाए बोले कोई बात नहीं शाहजी मैं तो थारा सू भी ज्यादा गरीब हूं। तो लड़की को बाप बोलो साला मेरा सू ज्यादा गरीब है तो रुपये वापस दे छोरी ने भूखा थोड़ी मारना है। राजस्थानी आदमी तो इतना प्रैक्टिकल हो। अच्छा अभी जहाँ गांधीगिरी को बड़ो हल्लो है लेकिन गांधी जी के आदर्श भी वहीं काम करते हैं। हृदय भी उसी का परिवर्तन हो सकता है जिसके हृदय हो। बा घर में बहु कामचोर आ गई तो सासू बिचारी झाड़ू निकालवा लाग गई। बा देखी कि आपा यहाँ करांगा तो या थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाओगी शायद ही को मन बदल जाए। बा सासू जब झाड़ू निकाल रही इतनी देर में भी को बेटो आगो बोलो माँ तू मत निकाल लिया बोलो मैं निकाल लूंगा। बस दोनों आपस में बहस कर रहे हैं बोलो तू मत निकाल ले मैं निकाल लूंगा। इतनी देर में बब बहू आ गई अंदर सू दोनों ने या तू मैं करती देख करके बोली बोलो झाड़ू के लिए क्यों झगड़ो करो जी एक दिन माँ निकाल लेगी एक दिन बेटो निकाल ले वो। वो जमाई तो 6.25 फुट को और सासू 4.5 फुट की। आपने कहे कि तोरण के ऊपर वरमाला जू पहली छातार तो है, बस सासू करे जमाई को, तो बस जी ही छातार तो करवा लागी तो वो 6.25 फुट को जमाई आधा फीट की चौकी पर और खड़े हो। अभी पूनी 7 फुट की हाइट पर बस 4.5 फुट की सासू कहीं पहुंचे तो वह काफी ऊंच नीच हो रही। तो पास में ही एक बराती खड़े हो, वो या ऊंच नीच देख करके बोलो जी इस समस्या को एक ही समाधान है, या तो जमाई जी ने धरते लियो नहीं सासू जी ने कंधो दियो। कवि लोग तो क्या है दर्द मासू हास्य निकल जाए, कवि समाज से लेता है समाज को देता है। किसी शायर ने कहा भी है कि हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वे क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। चार्ली चैपलिन ने भी लिखा एक जगह कि हास्य का जन्म करुणा से होता है, ये जानने के लिए मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ी। दर्द मासू हास्य निकला, वो एक आदमी का घर शमशान घाट के पास में, और वो नई नई भैंस ले, वो जी ही सुबह सुबह भैंस ने दूबे बैठे बठी कर एक अर्थी आगी, राम नाम सत्य राम नाम सत्य। गणिसार की भीड़ और यहाँ को दृश्य देख करके भैंस चिमक गई, लात मारो तो दूध डुल गो, गरीब आदमी को नुकसान होगो। खैर दूसरे दिन वो फिर जी ही सुबह सुबह भैंस ने दूबे बैठे बठी कर फिर अर्थी आगी, राम नाम सत्य राम नाम सत्य। बी गरीब को पहले दिन नुकसान होड़ो, वो पहली जाकर के अर्थी आला ने पूछ लियो, क्यों रे बोलो काल आड़ो लिया घूम रहे हो या कोई ताजा मार लिया। आपने तो इतनो आश्चर्य भरियो पड़ो है, तो बस वह पति पत्नी की कहा सुनी मासुई में बात निकालवा की कोशिश करी है। विशेष ध्यान चाहूंगो इमें राजस्थानी भाषा की एक नजाकत और अदायगी देखो। घराली बोली है जी आपना ब्याव की तिथि के है, मैं कही तिथि नहीं पुण्य तिथि बोल। घराली पूछो जी ते मर्द होकर मूछ क्या कटा ली, आदमी के क्लीन से हो जाओ ना, और शादी के बाद तो अमूमन आदमी कटाई ले भाई झुकवासू अच्छी हो कटी जाए, और शादीशुदा आदमी मूछ रखता भी है तो ऐसे लगता है जैसे पानी की बोतल पर तेजाब का लेबल लगा रखो। बोले जी मर्द होकर मूछ क्या कटा ली, मैं कही वास्तु दोष ठीक करायो है। ताली वाली बाजती रहनी चाहिए थोड़ी सी। घराली पूछो जी 5-7 दिन के लिए पियर जाया हूं के, मैं कही बावड़ी कोई काम तो मनसूबी कर ले वो कर। श्रीमती बोली जी आज तो हिचकी बहुत आ रही, मैं पूछो श्रीमती ने कि आज तो हिचकी बहुत आ रही, वाह बोली कोई मांग बड़ो याद कर रही हो सी। एक आपने राजस्थानी आदमी मीठा का प्रति बड़ो आकर्षण हो। घराली बोली जी हलवो बने जत्ते चाय के साथ 2 बिस्किट ले लियो, मैं कही ना मौसम टूट जाए। घराली पूछो जी थे थरा भायला की बरात में जासियो के, मैं कहीं नहीं फेर के दे घराई बैठे हूं वो। घराली बोली जी दोनिया का मंडका बना लिया, न गाय दिख रही न कुत्तो, मैं कही यहां कर कुत्ता आलो मंडको तू खा ले गाय आलो मने गाल दे। श्रीमती बोली जी 50,000 रुपया तैयार कर लियो, छोड़ा को जड़ू लो आ रियो है। 50,000 रुपया तैयार कर लियो, छोरा को जड़ू लो आ रियो है। मैं मन में सोची हे राम वो जड़ूलो छोरा को है कि मेरो। घराली पूछो जी थे भी व्रत करोगा के, मैं पूछो सागार में के बना रही है। वाह बोली जी थाने देखता ही मेरो जीव राजी हो जाए, मैं कही बावली सामने तो झूठ मत बोल। श्रीमती बोली जी देखो जी अपना ब्याह ने 25 बरस होगा, काल की सी बात लागे, मैं कही तन्ने लागती होगी काल की सी बात है। और अंतिम है सुनो, अगले महीने मेरा भाई को ब्याह मंडगो है, विशेष समर्थन चाहूंगो। सुनो, अगले महीने मेरा भाई को ब्याह मंडगो है, मैं कही आई होनी चाहिए साला में। तो आपने तो इतनो हास्य भरो पड़े राजस्थानी में, एक के है का माने कवि सम्मेलन का सिलसिला में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़ी रेल सु यात्रा करनी पड़े है। बाई संदर्भ माने लेकर के मैं एक रेल यात्रा लिखी, वह आपने मैं सुनाऊं भी के बाद में एक सिलसिलो जिया चालक हो। राजस्थानी भाषा में मैं बतायो थाने बातचीत में हास्य के यहाँ, वो एक आदमी दुकान पर चले गयो तो छोरो बैठे हो सेठ जी को, वो देखे रहे तो उधार ले गो तो वो टाल दियो। वो बोले जी 1 किलो चीनी तोल, तो वो बोले जी काको को नहीं। वो आदमी कही काको जेब में है तोल तू तो। एक ठाकर साहब दारू का नशा में घोड़ी पर बैठ गया और आपका नाई ने बोले रे नाई घोड़ी लिया। नाई बोले बाबजी घोड़ी पर तो बैठा हो। बोले आ तो मन भी पतो है लेकिन सावचेती के लिए पूछने में क्या अर्ज है। कई बार जल्दबाजी में ही हो जाओ हास्य। भाई एक मारे शेखावाटी में अठीसु पंडित जी जा रहा और बठीसु घासीराम जी आ रहा, तो बड़ा समझ करके घासीराम जी बोला दंड जी पंडोत, बोल वो कुछ चाह रहा मुंडा सु कुछ निकल गई, बोला दंड जी पंडोत, तो पंडित जी वहां सु ज्यादा जल्दी मां, बोले आशीराम जी का आशीर्वाद। वो गांव में क्या बेचारो बोलो डालो आदमी हो जी, परिवार में 3 लोग, वो भी की विधवा माँ और घराली, घराली चली गई पियर, वो बोलो आदमी हो, सब भी ने बावड़ो बावड़ो बोलता। पियर चली गई तो माँ बोली भाई जाकर के तेरी श्रीमती ने लिया। वो बेचारो गयो पियर, बड़े सासरे गयो आपके गांव में, घुसता ही देखियो पनकट पर कुछ औरतें पानी भर रही, कोई साड़ी लागती कोई साड़ी ली। वे देखे रहा तो बावड़े जीजा जी आगे थोड़ी सी मजाक कर लिया, नजदीक आकर पूछो जीजा जी कहीं आया, बोले जी घराली ने लेना आया। तो बोले जखी छोरी ने दे ले आया हुआ तो विधवा होगी। अब वो सीधो आदमी देखो बेचारो विधवा होगी तो ठेके लेंगे वापस घराना को। आता ही माँ पूछो बोलो क्या बात होगी क्या कौन ले हो, बोले वह तो विधवा होगी। तो माँ भी ने फटकारो बोलो बेवकूफ तेरे जीते जी विधवा कहीं होगी, तो बोले मेरे जीते जी तू कहीं होगी। तो माँ बोली मैं तो विधवा होगी तेरे बाप मर गो ही वास्ते है, तो बोले हो सके भी को भी बाप मर गो होगो। तो सब सुधी श्रोता यहाँ बैठे हैं, एक कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूँ रेल यात्रा की, मैं चाहता हूँ आप एक बार ताली बजाकर आदेश दें मैं कविता शुरू करूँ। ये ताली पहले इसलिए बजवा ली, बाद का कोई भरोसा नहीं था कि मेरा मानना है 20 साल हो गए कविताएं करते, भारतीय रेल और भारतीय जेल में कोई खास अंतर नहीं लग रहा, दो एक मोटे मोटे से फर्क हैं, एक तो रेल में खाने के पैसे लगते हैं, जेल में व्यवस्था निःशुल्क होती है, दूसरा रेल में कोई भी आदमी बैठ सकता है, जेल आजकल VIP लोगों के लिए रह गई है। हाँ, मैं यहीं से मैंने कविता निकालने की कोशिश की है। मैं देख रहा हूँ आदरणीय सुमित्रा सिंह जी भी यहाँ बैठी हैं और राजनीति के काफ़ी बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, राजनीति भी हालांकि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बोलबम बचो ही के राजनीति में। हाँ, वो तो पिछले दिन तो मेरे को मिल गए थे कई लोग, बोले यार ये BJP आ रही क्यों। मैंने कहा भैया लोगों ने वोट नहीं दिए, जमीन से जब कटता है ना कोई भी नेता हो चाहे आदमी हो तो वो मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कें बनी और उन पर बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए जिन पर वाजपेयी जी ऐसे खड़े थे। जमीन से कटने का यह दुष्परिणाम निकला कि वाजपेयी जी तो आकाश में देखते रहे, देश नीचे से निकल गया। एक सूत्री कार्यक्रम है बीजेपी वालों के पास, तो थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है तो कोई ना कोई भाई रथ ही स्टार्ट करके निकल लेता। पिछले दिनों तो आडवाणी जी के घर फोन किया वाजपेयी जी ने, तो आडवाणी जी के नौकर ने उठाया, बोलो साहब तो रथ लेकर के कनाट प्लेस में दाढ़ी बनवाने गए। और मीडिया की मेहरबानी देखो, ऐसा वातावरण रच देते। मुझे तो लगता है वो डॉक्टर चितरंजन राणावत जो आया था, मारवाड़ी आदमी था, वो कर गया सारी गड़बड़। घुटनों का जो ऑपरेशन करने आया था उसने ठोक के पैसे भी पूरे ले लिए और पार्टी के घुटने निकाल करके वाजपेयी जी के लगा दिए। राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर संसद में गए थे, कुर्सी मिली तो सोनिया जी की जन्मभूमि का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और फिर पूछ रहे हैं कि आ रहे क्यों। लेकिन सोनिया जी ने भी साफ सारे विरोधियों की हालत ऐसी कर दी जैसे कि गोपियों के कपड़े लेकर कृष्ण जी पेड़ पर चढ़ गए थे। रास्ता नहीं मिल रहा भाई लोगों को, हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है वो। सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री बना दिया मैं जमीन पर सोऊंगी, चने खाऊंगी, सिर मुड़वा लूंगी। सोनिया जी ने कुर्सी छोड़ करके एक तरफ तो त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया, दूसरी तरफ न सिर्फ सुषमा स्वराज के केस बचाए, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे आदमी को बनाए जिसने जिंदगी में केस ही नहीं कटाए। हालांकि वो हमारे मनमोहन सिंह जी भी बड़े दुखी हैं, विद्वान अर्थशास्त्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन बोले यार हमें तो कोई प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं। पिछले दिन वो मिल गए थे एक प्रोग्राम में, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी एक नुस्खा आपको बताता हूँ, गुरु मंत्र है, देश क्या दुनिया मान जाएगी कि आप ही प्रधानमंत्री हो। दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके बाहर नेम प्लेट लगी है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूँ। सारी दुनिया मान जाएगी। तो जीवन में इतना हास्य बिखरा पड़ा है, एक कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। राजस्थानी कहावतों में देखो कितना मर्म भरा पड़ा है। जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अमेरिका में हमला हुआ, आतंकवादी हमला, और काफ़ी जनधन की जान माल की हानि हुई, तब एक कहावत मैं लोगों को सुनाता था, पूरा उसमें रहस्य छिपा, पूरे घटनाक्रम का, अमेरिकी में जो आतंकवादी हमला हुआ। राजस्थानी कहावत है, बोलो अमेरिका को पहली बार पता लगा कि आतंकवाद क्या होता है, वरना वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। वो कहावत है कि भाई के मरने को दुख तो है लेकिन भाभी का नखरा मिटगा। राजस्थानी कहावतों का बड़ा संसार बड़ा समृद्ध है। एक वो रेल यात्रा आपको मैं सुनाता हूं, सुनिए। पहली पंक्ति एक रेल यात्री की पीड़ा। थाने एक भी पैसेंजर दिखा दू रेल यात्रा करेड़ो, मेरो दावत है बतानी से को जीव तो अक मरेड़ो। उतरने के बाद भी की यही हालत हो जाए। थाने एक भी पैसेंजर दिखा दू रेल यात्रा करेड़ो, मेरो दावत है बता नहीं सको जीव तो अक मरेड़ो। थाने रेल यात्रा की सुनाऊं आप बीती घटना, आयोजकों को टेलीग्राम आयो कि पहुंचनो है कवि सम्मेलन में पटना। टेलीग्राम देखकर मैं रोयो, घराली बोली अजी के होयो, मैंने कही ओणो जानो के हो, पटना रेल सु जानो पड़ेगो और खानो भी रेलवे को खानो पड़ेगो। तो घराली बोली देख कर थारा आंसुआ की धार, मैं समझ नहीं पा रही हूं थे पटना जा रहा हो या हरिद्वार। मैं समझ नहीं पा रही हूं थे पटना जा रहा हो या हरिद्वार, इच्छा आम की और बीच आंकड़ा का बोरिया हो, बावड़ा हो रोनो मन चाहिए थे कि रो रहा हो। आज ही चिंता करी सारो सामान सूटकेस में धर दू और थे उचित समझो तो बारह बामण भी आज ही कर दू, काल करे सो आज कर। जब तक थे लौट कर आओगा थारी याद में गीता का पाठ पढ़ाती रहूंगी, फोटो का अगरबत्ती जलार फूल भी चढ़ाती रहूंगी। पटना को प्रोग्राम है समझ लो भाग जागो, एडवांस रिजर्वेशन करा ले, जयपुर में कंप्यूटर भी लागो। तो कंप्यूटर को नाम सुनता ही मैं भड़क्यो, जको आदमी का हाथ काट दे भी पर मन कम विश्वास है, सही पूछो तो कंप्यूटरीकरण ही मानवता को असली सत्यानाश है। कंप्यूटर से मैं पहले भी कई बार धोखो खा चुके हूं, मैट्रिक में फेल होकर मेरिट में आ चुके हूं। ये जो ताली बजा रहे हैं सब ऐसे ही पास हुए हैं। कंप्यूटर से मैं पहले भी कई बार धोखो खा चुके हूं, मैट्रिक में फेल होकर मेरिट में आ चुके हूं। कंप्यूटर से टिकट बिल्कुल नहीं ले, चाहे तू कुछ भी कह दे, के भरोसों में टिकट ट्रेन को मांगू वो हवाई जहाज को दे दे। अब तू तो जाने मैं हवाई जहाज का नाम सु कितनो डरू, जब रेल में ही मरबा का 5 लाख मिले तो इतनी ऊंचाई से क्यों मरूं। घराली बोली है जी लेकिन थारो दोस्त तो हवाई जहाज में मरबा का 20 लाख बता रहे हो। थाने मेरी सोगने ते हवाई जहाज सुई जाओ, औरतों का क्या लालच है भी ना कौन रहे। मैं तो पिछली होली पर गुवाहाटी गयो कवि सम्मेलन में, तो घराली बोली जी बढ़िया उल्फा सुल्फा का झगड़ा उग्रवादी आदमी के देखता ही गोली मार दे रहेबा जो मैंने डर लाग रहे है। मैंने कहा डर की बात है, मैंने जाऊंगो मेरो आर्थिक नुकसान होगो, अगला को कार्यक्रम खराब होगो, भाई देवी को गोली गाली लाग गिर मर भी गया तो तू बेकारी कोई चिंता करी, मेरो 20 लाख को बीमो तेरी जिंदगी आराम से कटेगी। वह बोली जी डरी बात को नहीं है, रकम हाथ में आ जाए तब विश्वास हो। थाने मेरी सो को ने त्या वाइजाज सुई जाओ, 24 घंटा कोरी कविता मत फेंक्या करो, कदे तो जिंदगी में 2 पैसा को फायदो दे क्या करो। मैं कही बावली दोस्त की क्या आप ओड करांगा, अपनी मर्यादा है, वी को परिवार भी बड़ो और घर खर्च भी ज्यादा है। तो घराली मेरी विनती ने स्वीकारी और विदाई से पहली मेरी आरती उतारी, मैं स्टेशन के लिए कूच करियो, हाथ में अटैची डाटी, जी अकबर को सेनापति जा रहे वल्दी घाटी। स्टेशन आ रहे कुली ने पूछो रे कुली कठिन है टिकट खिड़की, वो मेरे एक दियो चाटो और 5-7 झिड़की, नालायक सिर पर चढ़ियो आ रहे है, एक स्टेशन मास्टर ने कुली बता रहे। दुर्दशा कराकर मैं टिकट लायो, तुरंत प्लेटफार्म पर आयो, एक जना ने पूछो गार्ड साहब या सामने खड़ी जी की ट्रेन पटना जाएगी या अहमदाबाद, वो कही सबसे पहली तो एक कुली ने गार्ड समझबा के लिए धन्यवाद। और व्यंग पर ध्यान चाहूंगो, सबसे पहली तो एक कुली ने गार्ड समझबा के लिए धन्यवाद, रही बात ट्रेन के जाने की तो भारतीय रेल का बारे में कोई के बता सके है, गाड़ी तो पटना की है लेकिन ज्यादा सवारी में अहमदाबाद भी जा सके। मैं कही मेरे कने एसी की टिकट है, यो एसी कोच कटेसी है, वो कही सब खिड़कियां का आकाश टूट रहा, पूरी गाड़ी एसी है। अब तेरो रस्तो नाप आगे में बैठ और ज्यादा ही एसी चाहे तो छात पर जा बैठ। मैं भी सो आगे नहीं बैठो, चुपचाप एक डिब्बा में जा बैठो, अहिया पूरा 100 घंटा सु पटना पूछो ठेठ, आगे मिला आयोजक बोला संपत सरल जी इतनी लेट। मैंने कही तसल्लीरा को बता रहे हूँ, दरअसल शताब्दी एक्सप्रेस सु आ रहे हूँ, 100 घंटा तो भाई लेगी, शताब्दी एक्सप्रेस सु आ रहे हूँ। खैर प्रोग्राम खत्म हो गो, मैं जयपुर की वापसी ट्रेन में बैठ गो तो रात ने सी टीटी आयो, फिर देखिए कि 58 साल में देश कैसे चला, किन लोगों ने चलाया, व्यंग पर आपका समर्थन चाहूंगा। रात ने सी टीटी आयो और एक सोएडा पैसेंजर ने टिकट के लिए जगायो, टिकट देख कर टीटी माथो ठोक्यो, घोड़ा बेचकर सूतो तेरी अक्ल भांग खारी है, टिकट गुवाहाटी की और ट्रेन जयपुर जा रही है। टिकट गुवाहाटी की और व्यंग पर ताली बजार समर्थन कर जो कि टिकट गुवाहाटी की और ट्रेन जयपुर जा रही है। पैसेंजर बोलो टिकट एकदम ओके है, सो बादे मने मत सता, गाड़ी गलत चल रही है, जाकर ड्राइवर ने बता। गाड़ी गलत चल रही है जाकर ड्राइवर ने बता तो पेंट्री कार वालों मेरे कान करने चिल्लायो चाय गरम। मैं बोलो रे बेशरम, पेट पीट के चिपरे लियाणो है तो खानो लिया, वो खानो लियायो और मैं खायो तो भारतीय रेल का खाना की के प्रशंसा करूं भाया, कंबक कांकरा मासू चावल चुक चुक कर खाया। और जी बात के लिए मैं कविता लिखी, कंबक कांकरा मासू चावल चुक चुक कर खाया, तो दोस्तों गाड़ी की इतनी तेजी रफ्तार, इतनी तेजी रफ्तार, जी 58 साल में चालिए भारत सरकार, जी 58 साल में चालिए भारत सरकार, 58 साल में चालिए सर। और एक अंतिम कविता मैं आपको सुना देता हूँ, इसके बाद में इस कार्यक्रम का दूसरा चरण हम शुरू करेंगे। गांधी जी का जब देहावसान हुआ तो वो कोई अपनी वसीयत नहीं लिख गए, एक विरासत छोड़ गए, उसमें कुछ एक चीजें थी, वो देश में किस किस आदमी के हाथ लग गई, वहीं से मैंने कविता निकालने की कोशिश की है। गांधी जी की विरासत, गांधी की विरासत। 20वीं सदी में दो बड़ी घटना देखी राम दुनिया, कविता चिंतन परक है, हाश्यव्यंग है, जहां अच्छा लगे समर्थन करें। 20वीं सदी में दो बड़ी घटना देखी राम दुनिया, अंग्रेज भारत छोड़े और गांधी जी दुनिया, स्वदेशी को प्रवर्तक स्वदेशी सु हारगो, सीना पर गोली खाई और स्वर्ग सिधारगो, जब सु कोई भी नेता मरे चित्रगुप्त जी एक प्रश्न अवश्य करे, नेताजी स्वर्ग लोगा या नरक। नेताजी कहे नरक ही ठीक है, भारत में राजनीति कर चुक्यो, नरक में मन कुण सताओगो, स्वर्ग में फिर भी गांधी जी चरखो कताओ। नरक में मने कुन सताओगो, स्वर्ग में फिर भी गांधी जी चरखो कताओगो। बापू देह के साथ ही छोड़िया लाठी घड़ी चश्मो खदर, एक बकरी दो चप्पल और तीन बंदर। ये गांधी की विरासत थी। बापू देह के अलावा भी छोड़िया लाठी घड़ी चश्मो खदर, एक बकरी दो चप्पल और तीन बंदर। देख कर बापू की ये निशानी, कृतज्ञ राष्ट्र के आंख्या की बजाय मुंह में आयो पानी। कृतज्ञ राष्ट्र के आंख्या की बजाय मुंह में आयो पानी। सब काम निपटने के बाद पुलिस आई और आता ही अर्थी की बजाय लाठी उठाई। लाठी उठाई ई बात में के शक है कि लाठी पर पुलिस को पैदाइशी हक है। दूसरे नंबर पर ही बापू की जेब घड़ी व सरकारी कर्मचारियों का हाथ पड़ी, व सरकारी कर्मचारियों के हाथ पड़ी। सरकारी कर्मचारी ऑफिस जाने से पहले घड़ी ने 2 घंटा पीछे कर दे, ऑफिस आने के बाद 2 घंटा आगे कर दे। लोग टोके देश पर कुछ तो तरस खाओ, लेट आओ हो तो लेट ही जाया करो। सरकारी कर्मचारी बोले, इस मामला में मारो कंसेप्ट बिल्कुल साफ है, एक ही दिन में 2 बार लेट होना उसूल के खिलाफ है। एक ही दिन में 2 बार लेट होना उसूल के खिलाफ है। जठा तक प्रश्न है चश्मा को, व्यंग पर ध्यान चाहूंगा, जठा तक प्रश्न है चश्मा को, तो राष्ट्र तो बिचारो बहुराष्ट्रीय कंपनियां के चरणा में खड़े है। अफसोस जो चश्मो सरकार के लागनो चाहे वो म्यूजियम में पड़े है, जो चश्मो सरकार के लागनो चाहे वो म्यूजियम में पड़े है। खद्दर का विषय में 16 आना सच है कि खादी आजकल शातिर अपराधियों का शरीर पर सूती कवच है। खादी आजकल शातिर अपराधियों का शरीर पर सूती कवच है। खादी की महिमा तो इतनी बड़ी है कि पुलिस जिखा के पीछे पड़ी रहती वहां का आगे पीछे खड़ी है। पूरो देश सोच सोच कर हो रहे चक्री कि आखिर कठे गई गांधी जी की बकरी। मैं बता रहा हूं सुनो गृहस्थी और योगी, बकरी सत्ता के अंडर में है और काम देनु होगी। शासन को एक ही है मिशन कि दूध मिले तो ठीक वरना चारा में कमीशन। अचानक नेहरू जी भीड़ ने चकमो देगा, चुपके सी उठार बापू की दोनों चप्पल लेगा। कांग्रेस बरसा सिंहासन पर चप्पल धरती रही और देश पर खड़ाऊ राज करती रही। लोग बोले बीजेपी के लिए बोलगा, कांग्रेस के लिए को नहीं बोलिया। वो चुनाव के टाइम एक नेताजी वोट मांगता फिर रहा, बोलो कांग्रेस ने वोट दीजो, कांग्रेस ने वोट दीजो। एक 80 साल की डोकरी बिचारी ने जिंदगी में वोट को नाम सुने ना कांग्रेस को। बाउल्टी नेताजी ने पूछ लियो, बोलो बेटा या तो बता मैं वोट हूँ या कांग्रेस। तो नेताजी भी मजाक का मूड में आ गया, बोले माताजी तो कोई जमाना हम वोट ही, पर अब तो तेरी हालत कांग्रेस से भी खराब हो रही है। अचानक नेहरू जी भीड़ ने चकमो देगा, चुपके सी उठार बापू की दोनों चप्पल लेगा। कांग्रेस बरसा सिंहासन पर चप्पल धरती रही और देश पर खड़ाऊ राज करती रही। इमरजेंसी के बाद विपक्ष नींद सू जाग्यो और एक चप्पल जबरदस्ती ले भाग्यो। आज वाही राजनीतिक चेतना दिन घाल रही है जखी चप्पल सड़क पर चालनी चाहिए व संसद में चालनी है। जखी चप्पल सड़क पर चालनी चाहिए व संसद में चाल रही है। फिर बंदरा की चर्चा हुई शुरू कि कुन ने मिलना चाहिए पूज्य बापू का तीनों गुरु। देखकर सबका हृदय कमल खिलिया, जद आंख और कान बंद आला दोनों बंदर तो प्रशासन ने मिला। प्रशासन ने मिला। तीसरो बंदर बिचारो मुंह पर हाथ धरे, न रोटी न मांगे न शोरी करे। जनता 58 साल से मुंह पर हाथ धर रही है और पूज्य बापू का तीसरा बंदर को सच्चो प्रतिनिधित्व कर रही। अंत में गांधी जी की हत्या से व्यथित हो कई गांधीवादी अन्न खाकर अनशन पर बैठिया। अन्न खाकर अनशन पर बैठिया और आत्मा की चिर शांति के लिए भजन गायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। सत्य और अहिंसा भी निपट गा क्योंकि विरासत का बंटवारा में देश का बंटवारा को अनुभव बहुत काम आयो। विरासत का बंटवारा में देश का बंटवारा को अनुभव बहुत काम आयो। और अंतिम बात कहकर के मैं आपसे विदा लूंगा। आपको मेरी बात अच्छी लगे भरपूर समर्थन करें, ताली बजाकर मुझे विदा दें। पूज्य बापू सू एक ही भूल बहुत बड़ी होगी, वो नमक कानून के तोड़ो देश में नमक हरामा की फौज खड़ी होगी। पूज्य बापू सु एक ही भूल बहुत बड़ी होगी, वो नमक कानून के तोड़ो देश में नमक हरामा की फौज खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।